ஓம் சாந்தி. एक बार हम सभी आपस में मिल करके उस रीति से ओम का ध्वनि का उच्चारण करेंगे जैसा हम सबने सुना है यज्ञ के आदि में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ सभी ब्राह्मण वत्स करा करते थे. अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम ध्वनि करेंगे और उसके बाद दूसरी गहरी श्वास लेंगे और उसको निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे. आज का जो विषय दिया गया है क्लीन और क्लियर बुद्धि के द्वारा संपन्न व संपूर्ण स्टेज की प्राप्ति. तो आज की मुरली भी जो थी बाबा की वास्तव में इसी विषय के ऊपर ही काफी हद तक चली हुई थी. आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि आज बाबा ने जहां एक तरफ कुछ क्लीन और क्लियर बुद्धि के भी लक्षण बताए, वहां पर दूसरी तरफ बाबा ने संपन्न और संपूर्ण स्टेज जो अभी तक किसने प्राप्त की है, संपूर्ण स्टेज अभी तक किसने प्राप्त की है, ब्रह्मा बाबा ने. तो उनका भी बाबा ने जैसे अंतिम पुरुषार्थ भी बताया इसमें कि कैसे बाबा ने उस स्थिति को प्राप्त किया. तो आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क भी ऐसा ही दिया है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा, सकाश देते थे सब बच्चों को, सामने रख करके सकाश शक्ति देते थे. और हमने तो ये प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि कैसे बाबा सकाश देते थे और कैसे बच्चे उसे महसूस भी करते थे. और विशेष करके ऐसी परिस्थिति में जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होती थी, कठिन परिस्थिति होती थी. मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे यज्ञ के बहुत पुराने अनन्य भाई दादा विश्व किशोर जी, जो यज्ञ के आदि से ही बाबा की स्थापना के कार्य में थे और जैसे अपने यज्ञ के मैनेजर के रूप में वो कार्य देखा करते थे, तो उनकी तबीयत कैसे जब खराब हुई, एक ऑपरेशन था तो उन्हें बंबई भेजा गया उसका ऑपरेशन के लिए और वो वहां पर गए. वहां पर तो वहां पर हमारे एक और वरिष्ठ भाई भ्राता रमेश जी, जिन्होंने अभी 2 साल पहले ही शरीर छोड़ा, तो वो वहां के निमित्त मुख्य भाई, तो वो वहां से फोन करते थे क्योंकि ये है बात सम लगभग 1967 की. तो उस समय वो फोन करते थे बाबा को, बाबा आज दादा की तबीयत, विश्व किशोर दादा की तबीयत, रात को उनको बहुत पेन रहा, रात भर वो सो नहीं सके. तो वो बाबा को समाचार मिलता था तो बाबा उस दिन और विशेष सकाश उन्हें दिया करते थे और फिर उनका फोन आता था रमेश भाई का कि बाबा आज तो वो बहुत बहुत आराम से सोए और बहुत उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जैसे शक्ति का। तो इधर से बाबा साकाश देते थे, उधर से वो उस साकाश को शक्ति को रिसीव भी करते थे और उसका अनुभव करते थे। ये सभी बच्चों के साथ वैलिड है, हम सभी बच्चे भी तभी बाबा की शक्ति का, सकाश का, सहयोग का, मदद का अनुभव कर सकेंगे। कब? जब हमारा भी ये जो बुद्धि रूपी रिसीवर है उतना क्लियर होगा, उतना क्लीन होगा। हम सभी अनुभवी हैं लौकिक विज्ञान के साधनों का, मोबाइल सबके हाथ में होता है। अगर मोबाइल किसी ने फोन किया और जो रिसीव करने वाला है उसके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है या वो काम नहीं कर रहा है, तो फिर तो वो रिसीव ही नहीं कर सकेगा मैसेज को। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा तो सकाश भेजता है, लेकिन हम बच्चे भी उस सकाश को रिसीव करें जो कि आज की मुरली में भी बाबा ने बोला है कि कभी भी ये आत्मा रूपी बैटरी ऐसा न हो, फुली डिस्चार्ज हो जाए। फुली डिस्चार्ज होना माने मोटर स्टॉप, अर्थात बुद्धि अगर विकारों में फंसी हुई होगी और दूसरी जगह बुद्धि एंगेज होगी तो बाबा के सकाश को हम शक्ति को रिसीव भी नहीं कर सकेंगे। तो आज बाबा ने एक तो इसके ऊपर बहुत काफी मुरली चलाई कि कैसे ये जो है सकाश शक्ति हम बच्चों को रिसीव करनी और इससे हमारी आत्मा रूपी बैटरी भी चार्ज होगी, आत्मा में ताकत भरेगी, विकर्म भस्म होंगे। ये सब आज बाबा ने मुरली में बहुत अच्छा बताया और साथ ही साथ ये स्पष्ट करें क्लीन और क्लियर इसमें क्या अंतर है। क्लीन जो है वो है पुरुषार्थ और क्लियर जो है वो है उसका रिजल्ट प्रारब्ध। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जैसे ये चश्मा है, अगर चश्मे पे धूल चढ़ी है तो वो क्लीन नहीं है, तो चश्मा लगाएंगे भी तो धूल जो है के कारण कोई भी चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, क्लियर दिखाई नहीं देगी, जो हम देख रहे हैं अस्पष्ट ही रहेगी। और चश्मे को उतार के साफ किया, धूल ऊपर से उतार दी, फिर वो चीज स्पष्ट दिखाई देगी। तो ऐसे ही जितना जितना हमारी बुद्धि क्लीन स्वच्छ होती जाएगी, और इसी को ही बाबा कहते हैं सच्चाई और सफाई। जितना जितना हमारे अंदर सच्चाई और सफाई बाप के प्रति, बाबा के ज्ञान के प्रति, परिवार के प्रति, जिन जिन से हमारा संपर्क है वो होती रहेगी क्लीन, तो हमारी बुद्धि भी बिल्कुल स्पष्ट जो भी बाबा निर्देश दे रहा है समय पर, बाबा ये समझो हमेशा हम बच्चों को निर्देश देता है, ये करो ये ना करो, इसे ऐसे करो, बिल्कुल क्लियर बुद्धि में आता है। भले कई बार हम अपने अलबेलेपन के कारण उस बात को चाहे कैच करते हुए भी अज्ञानतावश छोड़ दें चाहे, लेकिन बाबा करता जरूर है। बाबा ने मुरली में बताया था एक बार कि हर बच्चे का टीवी बाबा के सामने वतन में जैसे है रखा हुआ, और जब भी कोई ऐसी बात होती है, कोई बच्चा मुश्किल में होता है, कठिनाई में होता है, या कोई कमजोरी के वशीभूत होता है, तो उसका टीवी ऑन हो जाता है। मानो 50 टीवी रखे हुए हों, ऑफ हों सब, और 1, 2, 4 ऑन हो, तो तुरंत उसकी तरफ बुद्धि जाएगी, क्योंकि लाइट आ जाएगी और उसमें दृश्य आ जाएगा। तो बाबा ने बताया था ऐसा हो, ऑन हो जाता है, फिर बाबा देखता है कि क्या बच्चे की परिस्थिति है और बाबा वतन से भी उस बच्चे को सकाश देता है, शक्ति देता है कि वो उस कमजोरी को पार कर ले, उस पर विजय प्राप्त कर ले। ये बाबा के मुरली के महावाक्य हैं। लेकिन हम लोग कई बार उनको कैच भी करते हैं लेकिन अनदेखा भी कर देते हैं अगर बुद्धि की लाइन उतनी क्लियर नहीं है। तो इसीलिए हमें क्लीन, स्वच्छता, स्पष्ट, और जैसे बताया सच्चाई, सफाई, इसीलिए भक्ति में भी बोल दिया है, देखो क्या गॉड इज ट्रुथ, भगवान जो है वो सत्य है, भक्ति में कह देते हैं। तो सत्य इतना बाप को प्रिय है इसीलिए कहा जाता है भगवान के लिए भी क्या सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, शिव कल्याणकारी है, सुंदर है। तो सत्य पहले है। तो हम अगर भगवान के बहुत निकट आना चाहते हैं, संपन्न संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक तो ये क्लीनलीनेस, बुद्धि की स्वच्छता, वो बुद्धि के अंदर होनी चाहिए। और इसी ने कैसे पहचानेंगे, हम तो सब कहेंगे भाई मैं तो बड़ा सच्चा हूं, लेकिन उसकी पहचान क्या होगी? एक तो ये पहचान होगी जो बाबा मुरली में भी कई बार कहते हैं कि सच तो बिठो नच, यानी जो सच्चाई वाला होगा, जिसके जीवन में सत्यता होगी, सफाई होगी, सच्चाई होगी, वो खुशी में नाचता रहेगा। कई बार हमारे यहाँ जो एक भाई थे बेंगलोर में, अंगना भाई करके, बाबा उनका उदाहरण देते थे, बहुत खुशी में नाचता रहता है। और ऐसे बच्चे भी, कोई भी जो सच्चे होंगे वो खुशी में नाचते रहेंगे। और क्या पहचान है? अब हम इस दुनिया में रह रहे हैं, ये तो कलयुगी दुनिया, दुनिया वालों के लिए है, बहुत असत्य भी है, चारों तरफ समस्याएं हैं, और हम बच्चों के सामने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, जय पराजय, कई परिस्थितियां आती हैं। तो क्या होगा, जो बच्चा सच्चा होगा ना, तो उसकी दूसरी पहचान ये होगी, जो भक्ति में भी हम लोग कहते हैं कई बार, ज्ञान में भी, कि सच की नाव डोले डोले लेकिन डूबे नहीं। उसके सामने परिस्थितियां आएंगी, परेशान करेंगी, करने का प्रयास करेंगी, लेकिन उसे ये अडिग विश्वास होगा कि ये परिस्थिति के कारण मेरी जीवन रूपी नैया हिल रही है लेकिन डूब नहीं सकती, क्योंकि भगवान इसका खुद खिवैया है। और जितना ये नशा उसको होगा, बस ये उसको कभी भी परिस्थितियों से हारने नहीं देगा, और वो हर परिस्थिति में समान हो जाएगा। एक ये इसकी पहचान होगी, और जिसमें सच्चाई सफाई होगी, क्लीन होगी बुद्धि, वो हाँ देखो दो देवताओं के उदाहरण देते हैं अक्सर करके, या तो कृष्ण जी का या राम का, सत्रेता युगी राम या सतयुगी श्री कृष्ण जी। तो कृष्ण को हमेशा दिखाया है बंसी बजाता हुआ, नाचता हुआ, रास करता हुआ, खुशी में, यहाँ तक कि विपरीत परिस्थिति में भी। कौन सी विपरीत परिस्थिति? जो भक्ति में बता देते हैं भाई बॉल गई और काली देह में गिरी और वो बॉल को लेकर आए, और इस तरीके से इतनी भयानक परिस्थिति भी थी तो भी वो सांप के इसके ऊपर, छत्र के ऊपर डांस करते करते उस काली देह से बाहर आ गए। यानी कि विपरीत परिस्थिति में भी वो खुशी में नाचता रहेगा। जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां आती हैं, इसीलिए ऐसे का क्या उदाहरण है, ऐसे का उदाहरण भी कहा गया है, कवि लोग भी दे देते हैं, तो कई लोग गाते हैं, बताते हैं उनके लिए फूल का उदाहरण, जैसे फूल होता है ना, किसी को दो आदर का प्रतीक है, सत्कार का, स सम्मान का प्रतीक है, खुशबू देता है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। उसको, ऐसे व्यक्ति को कभी टेम्परेरी जीवन में हार की का सामना करना भी पड़े, दुनिया को लगे कि ये हार है और ये क्या हुआ, उसको भी लग सकता है अगर ज्ञान युक्त बुद्धि नहीं हुई, लेकिन बाबा कहते हैं वो हार नहीं है, वो वास्तव में भगवान के गले का हार आप बन रहे हो, ये उसका सूचक है। तो इसीलिए हमेशा बाबा को साथ रखते हैं, सत्य को साथ रखते हैं तो कभी भी क्लीन होंगे, तो समय पर बिल्कुल क्लियर निर्देश मिलते जाएंगे और हमारे पांव ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे जहां पर सेफ्टी होगी, जहां विजय होगी। इसीलिए बस अपनी बुद्धि को क्लीन रखना, एक तो ये आवश्यक है क्लीन, और जितने क्लियर होती जाएगी, हमारे सामने इस चीज का उदाहरण भी है। होता क्या है, हम दूसरों को जिंदगी में देखते रहते हैं, अपनी तरफ कम देखते हैं। अरे उसने ऐसा किया, क्यों किया, क्या किया, नहीं करना चाहिए था। और जब ये स्थिति होती है जीवन में तो क्या होता है, इस दूसरों की तरफ ध्यान रहता है, अपनी तरफ ध्यान नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जब अपनी तरफ अगर ध्यान जिसका होगा कि नहीं दूसरा जो करेगा वो पाएगा, मुझे तो ये करना है ये नहीं करना है, क्लियर उसके बुद्धि में होगा, तो वो कभी भी ऐसी परिस्थितियों के वश में नहीं होगा। परिस्थितियां तो आएंगी, ब्रह्मा बाबा के सामने भी हमें परिस्थितियां आई, हमें याद है, हमें वैसे बाबा के साथ 6-7 वर्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो बाबा की इतनी उम्र थी, 93 इयर्स की आयु ब्रह्मा बाबा की, लेकिन बाबा में इतना योग का, बस लगातार 1 घंटे तक जब तक मुरली चलाते थे बाबा, योग कराते थे, मुरली चलाते थे, एक ही आसन पर, बिल्कुल पांव हाथ बिल्कुल हिलते ही नहीं थे, ना आसन बदलने की जरूरत पड़ती थी इस आयु में भी, ऐसा बिल्कुल एक तो ये शरीर भी स्थिर। और कई बार बाबा ने कहा जिसका मन स्थिर होगा वो शरीर को भी सहज स्थिर कर लेगा, तो एक तो ये बाबा में देखते थे। लेकिन अंतिम जन्म है, इतना 62-63 जन्मों के विकर्म है आत्मा के ऊपर, वो सब भी इस अंतिम जन्म में चुकतू करने हैं, बाबा ने स्पष्ट ज्ञान दे दिया है। तो कई बार शरीर का हिसाब किताब आता था, खांसी आती थी, और खांसी आती थी जब वैसे अपने आप होंगे बाबा, कमरे में हों या दूसरी जगह हों, खांसी आए तो वो कोई विशेष बात नहीं उस समय, तो मानो दवाई खा लो, गोली खा लो या कोई भी परिस्थिति। लेकिन क्लास में जब खांसी अगर आती थी, कई बार हम देखते थे बहुत तेज, तो गला साफ करने की बाबा को जरूरत पड़ती थी। कई बार खांसी जब आती थी आंख भी गीली हो जाती थी, हम लोगों को लगता था बाबा को बड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन बस थोड़ा खांसी आई, खांसी रूपी परिस्थिति आई, उसको बाबा कैसे स्वस्थिति से दूर कर लेता था। बस खांसी परिस्थिति आई, परेशान कर रही है, बाबा की कुर्सी के संदली के पास एक ट्रांसलाइट का चित्र रखा रहता था, श्री कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का चित्र, तो बाबा उधर बस इशारा करके बोलता था, देखो बच्चे आज अभी ये 5 तत्व से बना शरीर भी पुराना हो गया है, तत्व भी तमो प्रधान है, और ये देखो खांसी आ रही है, हिसाब किताब है, लेकिन देखो बच्चे कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, सत्युगी दुनिया होगी, वहां पर कोई दुख नहीं होगा, 5ों तत्व सतो प्रधान होंगे, सतो प्रधान तत्वों से बना शरीर मिलेगा, कोई भी कष्ट नहीं होगा, तो बच्चों को भी कभी कोई परिस्थिति आए तो खुशी में नाचना चाहिए, खुशी में क्या करना चाहिए, खग्गियां मारनी चाहिए। तो कई बार बाबा ऐसा करके बताते भी थे, ओ ऐसा खुशी में, और बस फिर खांसी कहाँ चली गई पता ही नहीं चलता था, इतनी विकट परिस्थिति होती थी। लेकिन स्वस्थिति को बाबा इतना महान इतना ऊंचा कर लेते थे कि परिस्थिति नीचे हो जाती थी, परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेते थे। तो बस ये एक तो जो संपन्न संपूर्ण स्टेज ब्रह्मा बाबा ने धारण करी है, एक तो उसके अंदर हमने ये देखा। और हम सबके लिए ये उदाहरण है कि संपन्न संपूर्ण हम सबको बनना है, हम सबकी इच्छा भी है, एक तो हम ये जरूर करें संपन्न संपन्न। कोई भी परिस्थिति आए उसके बहाव में ना बह जाए, उसके तले में जाए और अंदर बाबा को जब याद करे गहराई में तो तुरंत ही बाबा ऐसे मैसेज देगा, ऐसा स्टेज बनाएगा, डायरेक्शन देगा बस, जिसमें हमारी विजय और सफलता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम लौकिक उसके लिए पुरुषार्थ ना करें, लौकिक तो पुरुषार्थ करने है। मानो बच्चे की तबीयत खराब हो गई, बहुत सीरियस है, या किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ, तो लौकिक तो पुरुषार्थ करना ही है, हॉस्पिटल ले जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, दवाई करनी है, वो सब तो करना ही है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति ऐसी रहे, उसमें हम विचलित ना हो, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हो गया, अब क्या होगा, नहीं, उसकी बजाय तब हम ऐसी स्टेज के अंदर चले जाए जो बाबा ने बताया। क्योंकि बाबा का तो टीवी ऑन हो गया, बाबा वहां देख रहा है, एक एक बच्चे पर बाबा की नजर रहती है और बाबा वहां से सकाश दे रहा है, उसमें विधि बता रहा है कि क्या हमें करना है, और उसके बाद उस विधि को धारण करके, उस सकाश को धारण करके, शक्ति स्वरूपा बनकर जब विकट परिस्थिति का सामना करेंगे तो उसके अंदर विजय समाई हुई है। एक एक बच्चे, हमने तो पचासों बार अनुभव किया है, एक एक बच्चे के ऊपर बाबा की नजर है। बाबा तो देता है सकाश, विधि भी बताता है, लेकिन हम कितना अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, बस वो अलर्टनेस से अगर हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ होगा तुरंत उधर से पार कर लेंगे। एक तो ये बाबा, दूसरा बाबा ने कहा जो उस स्थिति के नजदीक होगा, संपन्न और संपूर्ण स्थिति के, तो क्या होगा, एक उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन होगी कि अभी अभी आवाज में आना, अभी अभी जैसे आवाज से परे हो जाना। और ये स्थिति में हमने देखा ब्रह्मा बाबा ने जैसे मास्टरी करी हुई थी, हम लोग देखते थे जैसे अभी आती है पार्टी, दादियों से मिलते हैं, कोई टाइम फिक्स होता है, ऐसे ही जब बाबा थे साकार ब्रह्मा बाबा उस शरीर में, तो पार्टी आती थी तो पार्टियों को टाइम होता था कि भाई 10 बजे ये बंबई की पार्टी, 10:30 बजे ये दिल्ली की, 11 बजे अहमदाबाद की, लाइक दैट अलग अलग होता था। अब बाबा अक्सर करके डिपेंडिंग ऑन पार्टी कितनी बड़ी है, अगर ये 2-3-4 होते थे, 2-3 तो कई बार बाबा अपने कमरे में, अगर 7-8 होते थे जैसा तो बाबा अपनी झोपड़ी में मिल लेते थे, और अगर 10-12 या और बड़ी पार्टी होती थी उस समय तो यही पार्टियां बड़ी गिनी जाती थी 10-12 से ज्यादा, तो बाबा हिस्ट्री हॉल में, जिन्होंने पांडव भवन देखा है आप लोगों ने भी देखा होगा, तो बाबा वहां मिलते थे। तो बस जैसे बाबा पहले से बैठे हुए हैं, बाबा की याद में है, तो ब्राह्मणी आती थी और बस बाबा के सामने खड़ी हो गई, बाबा की आंख भी खुली है लेकिन बाबा जैसे इस शरीर में है नहीं, आवाज से परे की दुनिया में, और बस आंख खुली हुई वो सामने आके खड़ी भी हो गई। कई बार बाबा को ख्याल नहीं होता था तब ब्राह्मणी टीचर कहती थी बाबा बाबा, तो बाबा कई बार जैसे कोई ध्यान नहीं था, साक्षात्कार नहीं, आंख बंद नहीं, लेकिन जैसे बुद्धि का योग बाबा के पास सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में होता था, और बाबा एकदम हाँ बच्ची बोलो कि बाबा मैं फलानी जगह से आई हूँ, पार्टी बाहर खड़ी है, ले आऊं, हाँ हाँ बच्ची लेके आओ, तो जैसे बाबा आवाज से परे रहते थे और उस समय आवाज में जैसे आए और पार्टी बाबा से मिलती थी। बाबा से मिलने के बाद एक एक से बाबा, हमें तो कई बार अनुभव है, खड़े भी होके बाबा से मिलते थे, आओ बच्चे, ऐसे कई बार बाबा हाथ फैला देते थे, आओ मीठे बच्चे, बस और चुंबक की तरह जैसे ना खिंचते हुए बिल्कुल देहभान से परे बाबा की बाहों में चले जाते थे। कोई भी हो चाहे, देहधारी पुरुष स्त्री बच्चा बूढ़ा जवान, और बस ऐसे विदेहीपन का अनुभव करते थे, अशरीरी भूल जाते थे शरीर को। फिर ऐसी स्थिति का कुछ सेकंड, कुछ मिनट और अनुभव करते थे, उसके बाद बाबा ऐसे धीरे धीरे, हाँ बच्चे आओ आओ, तो ऐसे थपथपा के, जैसे शरीर में ना फिर कोई आत्मा निकल के जाती नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस जैसे चेतनता आत्मा से विड्रॉ होके एकदम बाबा के पास, जैसे ऐसा अनुभव होता था मैं विदेही अशरीरी आत्मा हूं। क्योंकि बाबा की शक्ति इतनी होती थी, बस वो शक्ति का अनुभव बाबा उस समय बच्चों को कराते थे। फिर उसके बाद बच्चे मिलते थे, हालचाल बाबा पूछते थे, मुंह में टोली खिलाते थे, एक जाता था फिर दूसरा आता था फिर तीसरा, हर एक को ऐसी स्थिति का अनुभव होता था। तो ये हर एक कोई जैसे आना ही नहीं चाहता था कि हम देह की दुनिया में आए और फिर अपने कारोबार में लगे, विचित्र सा ये अभ्यास आभास होता था। तो ये आवास से परे जब चाहे चले जाएं, जब चाहे करा सकें, और आवास में आने की स्थिति, ये तो हम सबको पहले से ही है कि आवाज में तुरंत आ जाते हैं। तीसरा बाबा ने बताया, जब संपन्न और संपूर्ण स्टेज जिसकी होगी होती जाएगी, उससे सब लोग एक अनुभव करेंगे और उसे स्वयं भी अनुभव होगा कि जैसे अभी अभी मैं इस जन्म की आकारी फरिश्ता स्वरूप हूं और अभी अभी जैसे भविष्य देवता स्वरूप, तो बस ये वर्तमान स्वरूप जो है वो तो ये है ही है, लेकिन बस या तो मैं इस जन्म का जो ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य है आकारी फरिश्ता स्वरूप उसका अनुभव होगा, या भविष्य देवता स्वरूप का। केवल अपने को ही नहीं होगा, दूसरों को भी होगा। और हमने देखा कितनी बार हम बाबा के पास जाते थे और बाबा बैठे हैं तो ब्रह्मा बाबा को देखते थे, बस एकदम सडनली धुंधला सा कुछ होता था, वहां पर कृष्ण का अनुभव होता था, विष्णु का अनुभव होता था, कोई ध्यान का पार्ट नहीं, साक्षात्कार का पार्ट नहीं। लेकिन बाबा की अपनी स्टेज ऐसी कि बाबा जब जिस स्वरूप में जाता था उस स्वरूप का अनुभव देखने वालों को भी होता था। ये एक तीसरा लक्षण है, संपन्न और संपूर्ण स्टेज का है लक्षण। और बहुत बार देखा बाबा मधुबन के आंगन में भी टहला करते थे, कभी हाथ पीछे करके और बस टहल रहे हैं, और दूसरों को हमें कितनी बार ऐसा अनुभव, सारा वातावरण इतना स्पिरिचुअली चार्ज हो जाता था। यही अनुभव हम लोग कई बार दादियों से भी करते हैं। दादियों के पास हमें याद आता है, दादी प्रकाशमणि जी के साथ बहुत बार बाहर भी जाना हुआ, यहाँ पर भी रहना हुआ, देखते थे बस ऐसा अनुभव बस दादी का। कई बार डॉक्टर आता था, दादी आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा इसमें, तो कहते नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रहा। नहीं नहीं दादी, आप हम बच्चों का दिल रखने के लिए कह रही हो कि दर्द नहीं, इसमें तो बहुत दर्द। नहीं नहीं, जब कभी कुछ अगर बात होती है मैं तो अपने को शरीर से विड्रॉ कर लेती हूँ, अलग हो जाती हूँ, दर्द शरीर को होता रहे चाहे, मुझे तो अनुभव ही नहीं होता दर्द का, दुख का अनुभव ही नहीं होता, तो मैं आपको कैसे बोलूं कि मुझे दर्द हो रहा है। तो ये अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का अनुभव हो, शरीर से हम विड्रॉ कर सके अपने को, ये प्रैक्टिकल ये देखने में आता था। और जो ब्रह्मा बाबा, हम सब भी तो ना ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हैं, ब्रह्मचारी तो बने हैं, अब क्या बनना है, ब्रह्माचारी। बाबा ने कहा पवित्रता की तो धारणा की है तभी तो यहाँ आए हैं, इधर, लेकिन ब्रह्मचारी तो बने हैं, लेकिन ब्रह्माचारी ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए ऐसी संपन्न और संपूर्ण स्टेज को हमें प्राप्त करना है जो बाबा ने करके दिखाई। और क्या बात देखी, मैंने बताया था ना, जैसे बहन जी ने बताया भाई 17 जनवरी को 1969 इंजीनियरिंग पास करके हम आसाम में पोस्टेड थे, दूर से दूर। जब हम आसाम जा रहे थे तो बस इतनी दूर, वहां कोई सेंटर नहीं था। हमने बाबा को बोला, बाबा उधर जाना हो रहा है और हमारी तो दिल नहीं है उधर, इतनी दूर वहां सेंटर ही नहीं है, पास में पास सेंटर भी कलकत्ता है 1000 किलोमीटर दूर। तो हम, बाबा ये हमारे पास दूसरे जॉब और हैं, दो डिपार्टमेंट के, हम उसमें ज्वाइन कर ले। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, बाबा ही तुम्हें वहां भेज रहा है। क्यों? क्योंकि वहां के बच्चे, वहां कोई गीता पाठशाला भी नहीं थी, क्लास भी नहीं चलती थी। मैं ये 1969-70 की बात कर रहा हूं, 70 की नहीं बल्कि 67 की, जिस साल पास किया था इंजीनियरिंग उसी साल मेरी पोस्टिंग वहां हुई थी। बाबा भेज रहा है, वहां के भोले भाले बच्चे इंतजार कर रहे हैं, भगवान का आवाहन कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हें निमित्त बना के बाबा वहां भेज रहा है। और हमने भी अनुभव किया, कुछ अनुभव नहीं था, न सेवा का अनुभव, न भाषण का अनुभव, कुछ भी नहीं, न हमारी बहुत ज्यादा कोई प्रदर्शनियां या ऐसा होते थे, किसी चीज का नहीं। लेकिन बाबा को अपना काम कराना होता है ना, तो बाबा अपना काम जैसे करा लेता है। और बाबा कई बार बोलता है ना, जब मैं देखता हूं कि समझने वाले बड़े अच्छे आए हैं और समझाने वाले में उतनी योग्यता नहीं है, तो बाबा क्या करता है, समझाने वाला जो होता है उसमें बाबा प्रवेश करके भी अपना काम कर लेता है। तो ये हमने कई बार अनुभव किया कि इस चीज की तो बिल्कुल योग्यता नहीं थी, अंग्रेजी में भाषण करने की, ऐसे अंग्रेजी का ग्रुप आ गया वो विदेशियों का, तो बाबा को आवाहन करके, बाबा आपका ही काम है, आपको ही उन्हें समझाना है। और बाबा ने ऐसे समझाया, बस निमित्त भले देखने में ये शरीर आता हो लेकिन करण करावन हार तो बाबा है, और ऐसी उसमें मिली। और जब ऐसा अनुभव एक दो बार कर लिया, फिर हमने सोचा, एक बार फिर ग्रुप आया कि हाँ हाँ हम तो समझा सकते हैं, अपने को बड़ा वो समझने लगे, और बस समझाने गए, नहीं समझा सके कुछ भी, दूसरों पर कोई असर नहीं हुआ। तो बाबा चाहता है कि हम जो भी सेवा करें वो बाबा को अर्पण करके करें, बाबा पर अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इस तरीके से ये अनुभव किया, और ये बाबा का हम यहाँ अनुभव करते थे। तो जब हम गए थे वहां पर, तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे जाओ, और समय पर बाबा तुमको बुला लेगा, समय पर। तो खैर उस वक्त तो बाबा ने बोला, हम गए, बहुत बाबा ने सेवा करवाई, बस बाबा जो आत्माएं आती थी, थोड़ी सी सेवा, जो एक लक्षण होता है कि भाई बाबा कहता है बच्चे जब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, पुरुषार्थ कम सफलता ज्यादा, बहुत कम। तो हम तो निमित्त जाके थोड़ा सा पुरुषार्थ करके चित्र खोल करके बैठ जाते थे, लोग आते थे समझते थे, और कई लोग समझते ध्यान में चले जाते थे, कोई बोला भी नहीं विशेष, ध्यान में जाके तो उनको विश्वास नहीं होगा तो कैसे होगा। ऐसे ही जब क्लास शुरू हुई, बस थोड़ा सा समझते थे, मुरली सुनते थे, और सुनते सुनते जब एकदम ध्यान में चले जाते थे, बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ रास कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आप समझो देखने में तो ये शरीर आता है लेकिन इसके पास तो कोई भी सामर्थ्य नहीं, कोई बात नहीं। करण करावन हार बाबा को जो भी कार्य कराना होता है ना, अगर हम अपना तन और मन दोनों शुद्ध और पवित्र रखेंगे, फिर बाबा देखो क्या चमत्कार करवाता है, क्या क्या सेवा कराता है, हमें भी सपने में वैसी उम्मीद नहीं होगी। तो इस तरीके से बाबा ने समय पर बुला लिया और हम 17 जनवरी को आ गए, और 17 और 18 जनवरी 1969 को इन दो दिनों में बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्टेज देखने को मिली। अपनी आंखों से हम लोगों ने देखा। क्या देखा? ये चौथी पांचवी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि बाबा के सम्मुख जाते थे तो पहले तो जाते थे, बाबा हालचाल पूछते थे, सेवा क्या कर रहे हो, कोई बात होती थी समझाते थे, बाबा समाधान देते थे। लेकिन इन दो दिनों में हमने क्या देखा, क्योंकि बाबा तो अपनी संपूर्ण अवस्था तक पहुंच चुके थे, कर्मातीत फरिश्ता स्थिति तक, बस बाबा दृष्टि देते थे, ये थोड़ी सी दृष्टि बाबा ने दी, बाबा कहते थे अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमें प्रश्न बोलने की पूछने की एक शब्द भी जरूरत नहीं रहती थी, बाबा प्रश्न भी बता देते थे हम क्या पूछने आए हैं और फिर उसका समाधान भी साथ ही साथ दे देते थे। ये कौन सी स्थिति है? मन जीते जगत जीत की स्थिति। अंत में जब हमारी भी ऐसी अवस्था होगी, अपना मन जितना जितना हमने जीता हुआ होगा, हम जगत का भी मन जीते जगत जीत, अपना मन जीता, अपने संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त करी, तो सृष्टि की समस्त आत्माओं पर भी हम विजय प्राप्त करते रहेंगे। तो एक बार, दो बार, तीन बार, लगभग उन दो दिनों में 6-7 बार ये अनुभव किया। कभी सेवा की प्रश्न लेके जाते थे बाबा के पास, कभी पुरुषार्थ की बात कोई लेके जाते थे, कभी अपने लौकिक जॉब की बात, कोई भी, बस बाबा तो बस दृष्टि दे करके, मन के भाव पढ़ करके, ये संपूर्ण कर्मातीत अवस्था बाबा ने इतनी हाई स्टेज बना ली थी मन जीते की, संकल्पों के ऊपर संपूर्ण विजय। और इस कारण से जिसने मन जीत लिया उसने तो जगत जीत लिया। तो मन जीते जगत जीत की ये स्टेज का अनुभव किया। ये हमने और भी अनुभव किया, क्लास में हम बैठे हुए थे 18 जनवरी की रात्रि क्लास, बाबा मुरली चला रहे थे, हम सम्मुख बैठे हुए थे, बस मुरली सुनते सुनते ही, मुरली लगभग खत्म होने वाली थी, रात्रि क्लास तो उसमें हमने मन में बैठे बैठे ही संकल्प उठा कि बाबा कुछ बोले हमारे लिए, क्योंकि बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे और बहुत दूर होने के कारण कोई आज की तरह तो टेलीफोन और मोबाइल ये सब तो कुछ होते नहीं थे, तो बहुत कम संपर्क रहता था। तो मन में ये संकल्प आया बाबा कुछ बोले। अब बाबा की तो कर्मातीत अवस्था थी और रिसीवर बिल्कुल क्लियर, ट्रांसमीटर हमें ये संकल्प आया, और संकल्प आने की देर नहीं हुई, बाबा का रिसीवर तो इतना क्लीन और क्लियर, तुरंत बाबा को टच हुआ, बाबा ने कैच किया और बाबा ने तुरंत ही नाम लेकर के कुछ महावाक्य उच्चार दिया। देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, बहुत मीठा, अंत तक संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे करके बाबा ने महावाक्य कुछ उच्चार दिए। लेकिन मुख्य बात ये बताना चाहते हैं इसमें कि हमारे मन में अगर कोई संकल्प होता है और सच्चे दिल से बाबा को करते हैं तो बाबा उसका किसी न किसी तरीके से उत्तर देता है, जो हम तक पहुंचता भी है। अभी भी आप कभी 18 जनवरी की वो सीडी लो, ऊपर तो मिलती है, यहाँ का मालूम नहीं, पेन ड्राइव के अंदर होगी कि 18 जनवरी की रात्रि जो बाबा की अंतिम साकार मुरली है, वो बाबा का मुरली दे दो, पेन ड्राइव वगैरह मिलती होगी, तो उसमें भी आप सुनोगे। उस मुरली की एक विशेषता और थी जो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था की तरफ लक्षण दिखाती है बाबा के, क्या कि उस दिन बाबा को एक बार भी न तो खांसी आई, न एक बार भी गला साफ करने की जरूरत पड़ी, जो इस बात का सूचक है कि जब अंतिम कर्मातीत अवस्था हमारी भी होगी तो शरीर के सब कर्म भोग के ऊपर हमारा योग बल विजय प्राप्त कर लेगा। योग बल हमारा इतना बलशाली हो जाएगा कि शरीर के कर्म भोग हमें हैरान नहीं कर सकेंगे। और बस पूरा का पूरा मुरली में एक बार भी बाबा को ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। तो बाबा ने भी जब शरीर छोड़ दिया था तो उसके बाद जब 12 दिन भोग लगाते हैं तो एक दिन भी पांचवें दिन या कुछ था शायद, बाबा से बच्चों ने पूछा संदेशी के थ्रू, बाबा आपकी अंतिम स्टेज क्या थी जब आप शरीर छोड़ रहे थे? ये बहुत आवश्यक है हम सबके लिए, क्योंकि हम सबको भी इस स्टेज से पार करना है। ये इस शरीर का ये हमारा अंतिम पेपर है। बहुत पेपर आएंगे, सबके सामने आते हैं, लेकिन ये अंतिम पेपर, जितने भी बचे खुचे हिसाब किताब होंगे वो सारे इस शरीर के थ्रू ही हमें चुकतू करने हैं। तो बाबा से पूछा, बाबा आपकी कैसी स्टेज थी जब शरीर छोड़ा? तो बाबा ने बताया, बच्ची मैं अंत समय में ना दोनों की बहुत युद्ध चल रही थी। एक तरफ कर्म भोग, शरीर के जो बचे खुचे योग बल रोग थे भोगना थी, बहुत फोर्स में थी, बहुत दर्द था शरीर में, हार्ट में बहुत पेन था जैसे, क्योंकि बाबा ने कई बार साकार मुरली में भी बोला है शरीर छोड़ने का कोई ना कोई कारण तो निमित्त बनेगा ही। और सबसे अच्छा कारण कौन सा शरीर छोड़ने का, कौन सा बाबा ने बोला है, हाँ हार्ट फेल, बस शरीर छोड़ा और बस आत्मा मक्खन से बाल की तरह निकल करके जैसे चली गई। तो अंत में बहुत युद्ध चल रही थी, एक तरफ योग बल की बाबा की याद भी थी, दूसरी तरफ कर्म भोग दर्द भी बहुत था। तो पहले तो ये कर्म भोग बहुत ज्यादा था और याद उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जितनी जितनी याद पावरफुल होती चली गई उतना ये कर्म भोग हल्का होता चला गया और ये दर्द की महसूसता नहीं रही। और अंत में योग बल ने कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और आत्मा जैसे मक्खन से बाल की तरह निकल के चली आई। ये हम सबको भी इसी स्थिति को पाना है। उस योग कर्म भोग से हम घबराए नहीं, जो कभी कभी बहुत दर्द के रूप में बहुत कष्ट के रूप में आता है, नहीं बस ये तो आया है, बचा कुचा हिसाब किताब मेरा चुकतू हो रहा है और बाबा बस हम तो आपके पास अब आए कि आए। और जितना इस स्मृति में रहेंगे तो कर्म भोग के ऊपर हमारा योग बल पूरा विजय प्राप्त कर लेगा। और जो गायन है अंतमति सोगति का, ऐसी स्थिति में अगर हमने शरीर छोड़ा ना, फिर ये अंतिम सदा काल की विजय निश्चित है ही है। जो पास विद ऑनर्स की लिस्ट है उसमें आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये अवस्था कब होगी? जब इसका बहुत समय तक अभ्यास होगा, बहुत समय तक अभ्यास होगा कि शरीर के कर्म भोग हों लेकिन मुंह से आह भी ना निकले, बस ये हो रहा है, ये चुकतू हो रहा है, बाबा बस मैं आत्मा पावन बन रही हूँ, आपके पास आने की तैयारी हो रही है। और आत्मा तो पावन बन के, क्योंकि परम धाम जो है वो तो पावन धाम है, अपवित्र आत्मा तो जा नहीं सकती, तो पावन धाम आत्मा में पावन धाम में जाना है, पवित्र बन के ही जाना है। अब या तो ऐसे पवित्र बने या कोई सजा खा करके, या फिर बाबा ने कहा अगर अंत समय कोई दूसरा याद आ गया, संबंधी याद आ गए, व्यक्ति और याद आ गए, वस्तु याद आ गई, वैभव याद आ गए, कुछ भी याद आ गया, तो उस हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए फिर वहां जन्म लेना पड़ेगा। और वहां जन्म लिया तो फिर जिंदगी के पहले 8-10 साल तो वेस्ट चले गए, जब तक बच्चा बने तब तक तो बच्चे रहे, तब तक तो पुरुषार्थ होगा नहीं। एक बाबा का ये देखा कि अंत समय में भी सबके मन की स्थिति जान गए, मन जीते जगत जीत। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को भी बनाना चाहता है कि हम बच्चे भी ऐसी हमारी मानसिक स्थिति हो जाए कि बस जो भी व्यक्ति आए अंत समय में कहने का तो चांस होगा नहीं, भाई मुझे ये इच्छा है, मेरी इच्छा पूर्ण कर दो, ये बात है नहीं। व्यक्ति आए उसके चेहरे से नैनों से हम पढ़ लें क्या इसकी आवश्यकता है। और हम तो दाता सब शक्ति गुणों से भरपूर अगर होंगे, हम उसको वो वरदान दे सकेंगे, वो दान दे सकेंगे, वो वरदानी मूरत बन करके तब हमारी वो स्थिति होगी। और वो आत्मा बस फिर वो बाबा ने कहा है रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई चली जाए, इतना आपके सम्मुख परिवर्तन हो जाए। अशांत आत्मा आए आपके सम्मुख आते ही शांति के सागर में लहराने का अनुभव करती चले। दुखी आत्मा आए सब दुख भूल करके जैसे मैं न्यारी हो गई सुख में के सागर में मैं लहरा रही हूं वैसा अनुभव करती हुई उसका रूप बदल जाए। लौकिक दुनिया में भी रूप बदलने की शक्ति किसके अंदर होती है? अग्नि के अंदर। अग्नि के अंदर कोई चीज डाल दो उसका रूप बदल जाता है पूरा। तो ऐसे ही हमने भी जब ज्वालामुखी योग की स्थिति हमने धारण की हुई होगी तो ज्वालामुखी योग के अंदर जो भी आत्मा आएगी उसके स्वरूप ये ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्टेज हमने अपनी आंखों से देखी। संकल्प हुआ तुरंत बाबा ने सिद्ध कर दिया जो भी आत्मा है के अंदर। और अंत में ये भी अनुभव होगा कि भाई कोई थोड़ा बहुत भी कोई ऐसा काम तो नहीं है जो पेंडिंग हो रहा हुआ हो और वो खींचता रहे। अंतिम दिन है, बाबा ने पहले कहा ईशु दादी को, जो ईशु दादी यहाँ विश्व कल्याणी में रहती है, शुरू से ही बाबा के लेटर्स लिखा करते थे, बाबा लिखते थे उसका ट्रांसलेशन करते थे, बाबा के पीए के रूप में जैसे वो थे तो वो अनुभव करते थे। तो बस जब उनको ये बाबा ने कहा उस दिन 18 जनवरी को, बच्ची आज जितने भी पत्र आए हुए हैं सबके जवाब लिखवा लो, एक भी पत्र ऐसा न रह जाए जो बिना अनआंसर्ड रह जाए, जिसका जवाब पहले जमाने में ये ईमेल और ये सब तो होते नहीं थे, कंप्यूटर इंटरनेट आदि आदि, तो इसीलिए बाबा लाल लाल अक्षरों से पत्र बहुत अच्छा लिखा करते थे। इतना नूरे रतन सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा प्रति उसका नाम लिख करके, और फिर बाबा पत्र छोटा सा होता था उसमें बहुत कुछ बातें लिख दिया करते थे। तो बाबा ने सारे पत्र लिखवा दिए क्योंकि एक भी अनआंसर्ड नहीं रहा, और दो तीन काम तो पेंडिंग जो बचे हुए थे। दूसरा नक्की लेक के पास म्यूजियम है ना, तो वो बिल्डिंग को कई दिन से बात हो रही थी लेने, वहां कुछ सेवा का साधन बनाया जाए, तो उस दिन बाबा ने वो भी क्लियर करा कि हाँ वो बिल्डिंग ले ली जाए। उसमें म्यूजियम नाम तो नहीं था तब, सेवा का साधन सेवा के रूप में वो ले, प्रदर्शनी परमानेंट लगाई जाए, वो बाबा ने कह दिया। और इस तरीके से तीसरा मुख्य बात, रोज रात को मधुबन में क्लास रात को 9 बजे होती है, 8:45-9 बजे, उस दिन बाबा ने शाम को 6:30 बजे ही कहा, घंटी एक रखी रहती थी, एक भाई को बुला के अनाउंस करवा दिया कि आज बाबा क्लास अभी जल्दी कराएंगे, सब लोग भोजन करके 7 बजे तक क्लास में आ जाए, भोजन करके, क्योंकि बाबा को मालूम था कि बस ये तो बच्चों से अंतिम मिलन होगा और अगर उस क्लास के बाद भोजन करना रह गया किसी का वो तो भोजन कर नहीं सकेगा, क्योंकि बाबा को तो मालूम था अब बस बाबा का इस शरीर से हिसाब किताब पूरा हुआ और जाने की तैयारी है। ऐसे हमें भी अंत में आभास हो जाएगा। ब्यूटी तो तभी, अगर हम भी दुनिया वालों की तरह मरे, कोई अर्थक्वेक आया, फ्लड आ गया कोई, तो उसमें ब्यूटी क्या है? हम सब पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट हैं, बहुत पास फर्स्ट क्लास, तो इसीलिए भगवान के घर में बैठे हैं। जो संकल्प करेंगे वो हमारा सिद्ध हुआ ही पड़ा है। हमें भी पहले से आवाज, बस बाबा आपके पास आए तो देखो कोई भी काम ऐसा अधूरा, क्योंकि जो पेंडिंग काम होता है अधूरा काम वो अंत समय अपनी तरफ खींचता है और आत्मा शरीर से नहीं निकल पाती। भक्ति में भी कहते कोई बहुत बीमार होता है मरने वाला होता है फिर भी मरता नहीं, शरीर नहीं छोड़ता, क्यों? भक्ति में कहते हैं भाई ये फलाने का इंतजार कर रहा है, फलाना आ रहा है, और जैसी कई बार अक्सर देखा, हमने भी खुद देखा, उसका इंतजार होता है, वो आए देखा बस जो बुजी का कहना सुनना हुआ करा और उसके बाद वो आत्मा शांति से शरीर छोड़ के चली जाती। ऐसे हम भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़े जो भीष्म पितामह का गायन है, तब तो ब्यूटी है। अगर हमने भी दुनिया वालों की तरह सबकी तरह शरीर छोड़ा तो क्या हुआ, और ये हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा ने सब कुछ जैसे पहले से इनडायरेक्टली पत्र भी लिख दिए और वो बिल्डिंग का काम भी कर दिया, क्लास भी जल्दी कराई, और क्लास करा के बाबा फिर क्लास के बाद बोला बाबा ने दरवाजे तक आके, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, और ये कह के बाबा गए कमरे में, दादी जी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए, अपनी शक्तियों की विल देते हुए करते हुए चले गए, छोड़ दिया। बस इस तरह हम बच्चों को भी ये ही ऐसी अवस्था को धारण करना है, संपन्न और संपूर्ण स्टेज। बाबा ने कहा अगर कर्मातीत स्थिति हुई और तुरंत शरीर छोड़ दिया तो क्या फायदा, कर्मातीत अवस्था हो और उसका कुछ दिनों तक कुछ समय तक अनुभव करें। क्या कर्मातीत अवस्था होती है इस रेफरेंस में, बस मैं एक बात सुना के पूरी करना चाहूंगा। जब ममा ने शरीर छोड़ा था 1965 में, तो ममा ऊपर गए तो वहां ऊपर तब तो साकार में बाबा तो इधर थे, लेकिन सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा ने पूछा कि बच्ची तुम कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई, तो मम्मा तो चुप रही, बाबा के सामने कभी भी मम्मा बोलते नहीं थे तो चुप रहे। तो बाबा ने पूछा तो मम्मा ने थोड़ा इशारा करा कि नहीं, तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची जाओ, अभी तुम शरीर छोड़ के आई हो, तुम्हारा शरीर वहां रखा है हिस्ट्री हॉल में, जाओ उस शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके आओ। तो बाबा ने मम्मा को ऊपर से भेजा नीचे, और थोड़े समय के बाद फिर मामा जब ऊपर गए तो बाबा ने पूछा बच्ची अनुभव किया क्या कर्मातीत स्थिति का, तो मामा ने कहा नहीं। क्यों बच्ची, कि बाबा जब मैं गई शरीर में तो शरीर तो ठंडा पड़ चुका था, शरीर के अंदर कुछ चुरपुर हुई नहीं, और कर्मातीत अवस्था का तो मतलब ही है कि भाई जाए आंखों से देखते हुए भी ना देखे, बोलते हुए भी, और ऐसा साक्षी होकर के सब दृश्य देखते चले, जो कर्मातीत स्थिति का बाबा ने अनुभव की कई बातें बताई हैं, लेकिन शरीर तो वर्किंग होना चाहिए ना, और शरीर ही जब मृत हो गया, ठंडा पड़ गया, आंख नहीं खुले, कान नहीं सुने, तो कैसे अनुभव। तब बाबा ने कहा था देखो बच्ची अभी कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं किया ना, अब जाके जन्म लेना और फिर अगले उसमें पुरुषार्थ करके फिर तुम्हें कर्मातीत अवस्था का अनुभव करना पड़ेगा। देखो इस बात को भी इतने कुछ 45 साल जैसे हो गए, और इतने समय तक भी कर्मातीत का पुरुषार्थ, और मम्मा जैसी आत्मा जिन्हें बाबा भी इतना नंबर वन रखते हैं, तो उनका भी वो बाकी रह गया तो हम और आप तो फिर कहाँ है। इसलिए हमें भी इस जन्म में कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है, जिससे जहां तक संभव हो हमारे अनुसार हम दूसरा शरीर न लेना पड़े, और इस स्थिति में ही इस शरीर के द्वारा ही कर्मातीत स्थिति का अनुभव करें। तो इस तरीके से ये जो स्थिति संपन्न संपूर्णता की अनुभव करी, ये हम सब भी अनुभव करें, मन जीते जगत जीत की भी, इस समय आवाज में जब चाहे आए जब चाहे चले जाएं, जब चाहे अभी अभी यहां अभी अभी वहां, और ये सारी स्थिति कभी हमारे द्वारा लोगों को वर्तमान फरिश्ता स्वरूप का अनुभव हो, कभी हमारे द्वारा लोगों को भविष्य स्वरूप का अनुभव हो। तो जब ऐसी स्थिति होगी तब हम संपन्न संपूर्ण होते जाएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा हुए, और साथ ही साथ ये स्थिति का आधार ही है कि हमारी बुद्धि कितनी क्लीन और क्लियर होगी, कितनी सच्चाई सफाई होगी। और जब ऐसी स्थिति होगी तो हम सब जरूर ही अवश्य ही इस स्थिति का संपन्नता संपूर्णता का अनुभव करते हुए बाबा के साथ ही साथ चलेंगे। सबको परम धाम तो जाना है, और वहां से फिर नई दुनिया में भी पार्ट बजाने आएंगे। ओम शांति, ओम शांति।
आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
कहे हाँ जी एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं।